सूरत आराफ के बाद सूरत अनफाल है। सूरत आराफ मक्की सूरत थी, वहाँ तस्बीह का तज़किरा था, अल्लाह की मोहब्बत, करेक्टर बिल्डिंग की बात थी। अब यहाँ आपको बड़ी बोझल लगेंगी दो सूरतें, अनफाल और इससे अगली तौबा। ये दोनों मदनी सूरतें हैं, यहाँ अमली जिहाद का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हथियार उस वक्त पकड़ाए जबकि उनके अंदर ठहराव आ चुका था, उनका गुस्सा काबू में आ चुका था, सहाबा कराम की तालीम के साथ साथ तरबियत हो चुकी थी। तालीम, तरबियत, तज़किया और अमीर की इताअत, ये चार काम सहाबा के पूरे हुए। उसके बाद अल्लाह ने सूरत अनफाल में जिहाद बिस्सईफ का हुक्म दिया। सूरत अलराफ में जिहाद बिन नफ्स की बहुत सारी बातें थी, यानी अपनी इसलाह करो, फतह के आदाब सिखाए जाएंगे। इस सूरत में जब भी हम पढ़ने लगे हैं, गज़वे बदर के तनाजर में सूरत अनफाल नाजिल हुई, और इस सूरत में जो अब हमने पढ़ना है, थोड़ा सा इंट्रो ही दे रही हूँ सूरत का, बाकी बातें कल के पारे के साथ होंगी इंशाल्लाह, कि दुश्मन पर काबू पाने से पहले खुद पर काबू पाओ। सेल्फ कंट्रोल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनिमीज कंट्रोल। फिर अगला मैसेज जो इस पारे से आपको इस सूरत से मिलना है, मकसूद कामयाबी नहीं, मतलूब दीन की सरबुलंदी या सरफराजी है। वो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और जंगी अखलाक की तालीम है, यहाँ तो आम तौर पे अखलाक नहीं सीखते, जंगों में कौन होगा, बेगुनाह शहरियों को मार दो। अल्लाह तो जंग करने के भी तरीके सिखाता है, हमारा नबी तो वॉशरूम में जाने के भी तरीके सिखा के गया। सहाबे कराम इस पे फ़ख्र महसूस करते थे, कोई उनको रिजेंटमेंट नहीं महसूस होती थी इस बात पे। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि इस सूरत को सुनते हुए अपने आप को खुशकिस्मत समझें। ये वो सूरतें हैं जो आपके ईमान को बढ़ाएंगी। ये दोनों मेरी भी फेवरेट सूरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे कि मैं आज इनका हक अदा कर सकूँ जितना भी आपको इसमें से देख के जाऊँ। लेकिन बारह सूरत अनफाल एक बड़ी अहम सूरत जो शुरू होने लगी है, इसका मरकजी मजमून फलसफा जिहाद है। जिहाद के आदाब, तरगीब जिहाद, अहकाम, सुलह और जंग की बातें, और फजाइल जिहाद, यानी पूरी सूरत में जिहाद कताल के मानों में, जो इस्लाम की टॉप मोस्ट चीज़ है। जिहाद शुरू होता है नफ्स से, ये करीब तरीन है, लेकिन जो बुलंद तरीन है वो कताल है। और ये दोनों चीज़ें जिंदगी में साथ साथ चलती हैं वक्त और हालात से। और ये सूरत जो है, ये जंगे बदर रमज़ान 2 हिजरी में एक वाक़े हुई थी, तो सूरह अनफाल भी इसी दौर के करीब थी। सूरत अल्लाक और सूरह मोहम्मद भी इसी दौर में नाजिल हुई थी। बस इसका पिछली और अगली सूरत से रब थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। सूरत आराफ में भी हमने पिछली कौमों के खिलाफ अल्लाह की पकड़ देखी, 6 कौमों की हलाकत का तज़किरा था, यानी अल्लाह ने पिछले अम्बिया कराम की कौमों को डायरेक्ट एक्शन के ज़रिए तबाह कर दिया। किसी पे तूफान आया तो किसी पे कह लीजिए जलजले आए। यहाँ सूरत अनफाल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को इनडायरेक्ट एक्शन के ज़रिए, यानी मुसलमानों की तलवारों के ज़रिए ख़त्म करना है। ये सारे उस बात का एक खुलासा मैंने आपको दिया है जो लोग कहते हैं जंगें क्यों हुई, मुलाहमात नबी क्यों। लोग तो सूरह अनफाल और तौबा को कुरान से निकालने के मुतालबे कर रहे हैं। तो याद रखिए, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनसरिही वबिल मोमिनीन, इस सूरत में हम देखेंगे इंशाल्लाह नसरु मिन अल्लाह की बात। और इसमें आप देखेंगे कि इससे अगली सूरत तो बिल्कुल ही इसी के मजमून की है, इसीलिए फिर सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। आइए ज़रा सा तर्जमे पे चलते हैं, और इंशाल्लाह इस सूरत की मज़ीद खूबसूरतियाँ हम कल के पारे के साथ भी देखेंगे। इस वक्त तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को सुनकर मानने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरत अनफाल तरतीब में 8वें नंबर की सूरह है, और इस पारे में इसकी सिर्फ 40 आयतें हैं, 1 से 40। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 1 to 10, रुकू नंबर 1, मोमिनीन की सिफात। यसअलूनकानिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल, चूँकि गज़वे बदर पहली जंग थी, तो माले गनीमत के मामले में क्या किया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ था। 40 आयतें गुजार कर कल के पारे की पहली आयत में उसका जवाब है। लेकिन यहाँ क्या कहा, अभी माल की बातें क्यों पूछते हो, अभी ये क्यों पूछते हो, इधर क्या उधर, पहले अपनी तरबियत तो करो। बड़े खूबसूरत अंदाज है, सुनिएगा। ये लोग आपसे गनीमतों का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप फरमा दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं, बस तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इसलाह करो। और अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो, यानी आपस का ताल्लुक मुसलमान का मुसलमान से, साथ काम करने वालों का, जंग जाने वालों का ज्यादा अहम है। फौजी आपस में ही लड़ते रहे तो दुश्मन को कौन मारेगा? आज उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है? एक दीनदार तबका दूसरे को बुरा कह रहा है, एक जमात दूसरे को, एक फिरका दूसरे को, इनको दुश्मन से जिहाद करने की फुर्सत ही नहीं है क्योंकि वो आपस में जंगो जदल पे लगे हुए हैं। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं, जब अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो इनके कुलूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयतें इनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें इनके ईमान को और ज्यादा करती हैं। ये हैं ईमान की ताकत का नुस्खा, रेसिपी ये ले लीजिए इसको। पहला रुकू ईमान को बढ़ाने के लिए, जिसको अपना ईमान कमजोर होता है, एक एक पॉइंट पे गौर करें कि ये गोली सुबह खानी है, ये शाम को खानी है, ये इतनी ये उतनी, और अगला काम क्या करना है। और वो लोग अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं, और हमने जो कुछ इनको दिया वो इसमें से खर्च करते हैं। सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके बड़े दर्जे हैं, इनके रब के पास और मगफरत और इज्जत की रोजी है। अब आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, ना आप अभी नमाजें पूरी पढ़ें, ना आपका तवक्कुल हो, ना आपके अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात है, आपको जिहाद क्या समझ आना है? आज हमारी औलादों को ये चीजें देंगे तो तलवारें पकड़ेंगे। पहले कलम पकड़ता है इंसान, फिर तलवार पकड़ता है, तीर पकड़ता है, और माओं का काम होता है खुद भी इल्म लेना और अपनी नस्लों को इल्म की मोहब्बत देना। अब यहाँ से गज़वे उहद का किस्सा सुनिए। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया, और मुसलमानों की एक जमात इसको बोझल समझती थी, वक्त होता ना तो मैंने इधर आपको कम अज़ कम 1 मिनट सोचने का दावत देनी थी। क्या ज़रूरत थी इधर घर की बात करने की? बस आप गए बदर के लिए, आपको आपके घर से निकाला हक के साथ, जैसे आज आप निकले हैं अपने घरों से, मैं निकली हूँ हक के साथ, निकली हूँ हक देने के लिए, बैठी हूँ आपके शहर में, आपकी इस मस्जिद में क्यों बैठती हूँ मैं सारा दिन? आपको हक देने के लिए, और क्या लेना है मुझे आपसे? तो क्या अल्लाह ये ज़ाया करेगा? आपका ये रोज़ आके बैठ जाना अल्लाह ज़ाया करेगा? बड़ी कदर है उसके पास, घर ही तो आज नहीं छूटते हमसे, छूट जाना है एक दिन, मलकुल मौत ने आना है, घर पीछे पड़ा रहना है। और वही जुमला कल वाला याद रखिए कि सोचिए मेरा इंतकाल हो चुका है फिर भी सब हो जाना है, घर वाले भी कहेंगे तो आप उनके साथ भी यही सोच रख सकते हैं कि वक्त नहीं रुकता, आज मरे कल दूसरा दिन। अल्लाह ने नबी के ये तकाजे दिखाए हैं कि ये दीन क्यों फैला। आपको भी घर अच्छे लग, किसको घर अच्छा नहीं लगता? घर वाले किसके पाँव की बेड़ी नहीं होते? ये तो हमारी एनर्जी ड्रिंक है, घर को घर वालों को देखकर हम चार्ज हो जाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन इसी रोज़ और शब में खो के ना रह जा कि तेरे जमानों मकान और भी हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का ये मकसद बन जाए ना अल्लाह के दीन की सरफराजी, फिर जो अल्लाह की नेमतें आपको मिलती हैं उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। आप सारा दिन किसी काउंटर पर खड़े होके वो ना कमा सकें जो अल्लाह आपको प्यार और मोहब्बत के नाम पे दे दे। वो इस हक के बारे में और इसके बाद किसका जहूर हो गया था, आपसे इस तरह झगड़ रहे थे गोया कोई इनको मौत की तरफ हांके लिए जा रहा है, और वो देख रहे हैं। कुछ लोगों को नेकी के मवाके ऐसे लगते हैं जैसे मौत की तरफ हांकना, कुछ को मस्जिदों में जमात से पढ़ना मौत लगती है। आज सच्ची बता रही हूँ, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो अल्लाह ने करना था वो खुद कर रहे हैं, और जो अल्लाह ने कहा था तुम करो वो कहते हैं फर्ज बनता व रब्बू का फकातिला। हम इस रोटियां पकाने के लिए नहीं दुनिया में आए, झाड़ पूंछ के लिए नहीं आए दुनिया में, हमने बच्चों के लिए आज क्या पकाना है, चटनी कौन सी खाना, खिलाइए इबादत है लेकिन मकसद नहीं है। आज हमारी दुनिया इतनी लेबोरेटेड है इसलिए नहीं। और आप तो बेचारी औरतें, आप क्या बोलेंगी? मेरे सामने कोई मर्द होता तो मैं उसको पूछती कि कितना को और कमाओगे मेरे भाई, और कितनी तिजोरियां भरोगे, और कितने तुम्हें प्लॉट खरीदने हैं, बस करो। अल्लाह तुम्हें फारिग रखता है इसलिए कि कुछ तो कुरान पढ़ो, हम फिर भी नहीं पढ़ते, जॉब चली जाती है हमसे फिर भी नहीं पढ़ा जाता, वर्क फ्रॉम होम है हम फिर भी नहीं सुनते, खबरें सुनते हैं सिर्फ, या फिर हमें कुछ ड्रामे और फिल्में देखने की आदत है। तो आज उम्मत मुस्लिमा वही बात है, खासा है खासन, आज उम्मत मुस्लिमा के अमल ही ऐसे हैं कि अल्लाह की मदद पीछे रुकी भी है, रुकी भी है पास, लेकिन अल्लाह कहते अभी नहीं इनको देनी मैंने, पहले ये ठीक हो जाएंगे सीधे होंगे फिर दूंगा। और तुम लोग इस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला तुमसे इन दो जमातों में से एक जमात का वादा कर रहा था कि वो तुम्हारे हाथ आ जाएगी, आज भी अल्लाह यही कह रहा है आ जाएगी, और तुम इस तमन्ना में थे कि गैर मुसले जमात तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अपने अहकाम से हक का हक होना साबित कर दे और इन काफिरों की जड़ काट दे। ये है हक और बातिल का टॉपिक। अल्लाह आज भी यही कर रहा है, अल्लाह ने बदर में भी यही किया था, और मूसा और फिरौन के किस्से में भी अल्लाह की वही सुन्नत थी। और इन काफिरों की जड़ काट दे ताकि हक का हक और बातिल का बातिल होना साबित कर दे, गो ये मुजरिम लोग इसे नापसंद ही करें। अल्लाह किसी से नहीं डरता, जिस वक्त उसने करना है आप सुन लेंगे वो बात के हो गई। राजा नसरुल्लाह वल फतह होके रहेगा ये काम। इस वक्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1,000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार चले आएंगे। देखिएगा जरा, शुरू में 1,000 की बात की क्योंकि मुखालिफ में दुश्मन 1,000 थे, और अल्लाह ने ये इमदाद महज इसलिए की कि बिशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार आ जाए। और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी फरिश्तों ने जंग नहीं जीती, वो तो आपके मेरे सुकून के लिए अल्लाह करता है। मदद तो अल्लाह की तरफ से है, नसरु मिन अल्लाह ही। अब आप देखिए कि इस रुकू में 4 आयतें ईमान से मुतल्लिक हैं। अनफाल की पहली आयत, माल की तकसीम से पहले अपनी इसलाह करो, माली मामलात को कम से कम डिस्कस करो। फिर आयत नंबर 2, सच्चा ईमान बंदे को सच्चा मोती बना देता है। आयत नंबर 4, दरजात और मगफरत सच्चे मोमिन के लिए। और आयत 5, हिदायत का पैगाम आम करने के लिए घर का आराम छोड़ना पड़ता है, फिर ही दीन के पौधे पे बहार आती। आपने नोट किया सूरत के शुरू में 4 आयतों में ईमान की बातें, फिर आप देख लीजिए ये आयत सूरत सुननी आपके लिए कितनी ईमान अफरोज होगी इंशाल्लाह। कौन होते हैं मोमिनीन? अल्लाह के जिक्र पर जिनके दिल लरस जाते हैं, अल्लाह रसूल की इताअत करने वाले, अल्लाह की आयात से इनके ईमान बढ़ जाते हैं, नमाज कायम करने वाले और इन्फाक करने वाले। ढूंढिए अपने अंदर, आईने में खड़े होकर देखेंगे कि क्या मैं मोमिना हूँ। फेथ इन एक्शन, अल्लाह से डर के रहना है, मोमिनीन की सिफात पैदा करनी है, अल्लाह ताला की मदद का यकीन रखना है। रुकू नंबर 2 आयत 11 से 19, अल्लाह मोमिनीन की ज़रूर मदद करता है। इस युगशी को मुन्नु आसमनतम मिन हो, पूरा गज़वे बदर का अब आपको मंजर दिखेगा। इस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तुम पर ऊंघ तारी कर रहा था और अपनी तरफ से चैन देने के लिए तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था कि इस पानी के जरिए से तुमको पाक कर दे और तुमसे शैतानी वसवसे को दूर करे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा दे। इस वक्त को याद करो जबकि आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, बस तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, मैं अभी कुफार के कुलूब में रोक डाले देता हूँ, बस तुम गर्दनों पर मारो और इनके पोर पोर को मारो। ये इस बात की सजा है कि उन्होंने अल्लाह और रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की और इसके रसूल की मुखालफत करता है बस बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। बस ये सजा चखो और जान रखो कि काफिरों के लिए जहन्नुम का अजाब मुकर्रर ही है। और अब बहुत देर बाद आपको पुकारा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना मनु इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़ख़्फ़न फ़ला तवल्लूहुमुल अदबार। ऐ ईमान वालो, जब तुम कुफार से दू बदू यानी आमने सामने फेस टू फेस मुकाबिल हो जाओ तो इनसे पुश्त मत फेरना। और जो शख्स इनसे इस मौके पर पुश्त फेरेगा, मगर हाँ जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलता हो या जो अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो, वो मुस्तस्ना है। बाकी जो ऐसा करेगा वो अल्लाह के गजब में आ जाएगा, इसका ठिकाना दोजख होगा और वो बहुत ही बुरी जगह है। बस तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह ने इनको कत्ल किया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। लिख ले, ईमान वाले का हाथ इतना कीमती हो जाता है कि अल्लाह उसमें आए हुए पत्थरों को बुलेट बना देता है। और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी है, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से इनकी मेहनत का खूब इवज़ दे। बिलाशुबा अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। एक बात तो ये हुई और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला को काफिरों की तदबीर को कमज़ोर करना था। अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बास आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए नहायत खूब है, और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे ज़रा भी काम ना आएगी, वो कितनी ज़्यादा हो। और वाकई बात ये है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। देखिए दोबारा इस अगले रुकू में फिर 4 आयतें ईमान पे, ईमान से भरी भी सूरत। कहते हैं ना, पालक खाओ तो आयरन मिलता है, यान वो गाजर खाओ तो पता नहीं विटामिन डी मिलता है। कुरान की सूरतों के मिजाज को पहचानेंगे आप इंशाल्लाह। ईमान अफरोज सूरत है ये। क्या है 12 नंबर आयत का टॉपिक क्या है या उसका पैगाम? मोमिन की मदद के लिए फरिश्तों का नजूल सिर्फ तसल्ली थी। आयत 15, अनफाल जिहाद से फरार एक संगीन जुर्म है, कबीरा गुनाह है। क्यों? इसलिए कि ये बंदा साबित करता है कि मुझे अपनी जान इस्लाम की जान से ज़्यादा प्यारी है। आयत 17, अल्लाह कुफार की साजिशों को नाकाम बना देता है। और 19, नाहक को कसरत फ़ायदा नहीं देती, यानी जो हक पे नहीं होता वो चाहे कितना भी ज़्यादा रिसोर्सफुल क्यों ना हो वो कामयाब नहीं होगा। फेथ इन एक्शन, अल्लाह के जिक्र से दिलों को मजबूत करना है। ईमान वालों को आजमाइशें आती रहेंगी, बस हमारा काम जमे रहना है, जमे रहिए, अल्लाह बाकी काम खुद करेगा। रुकू नंबर 3, आयत 20 से 28, अहले ईमान को अल्लाह रसूल की इताअत की पुकार, इसको ज़रा से दिल पे लीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु वअन्तुम तस्मऊन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का और इसके रसूल का कहना मानो और इसका कहना मानने से रूगर्दानी मत करो, और तुम सुन लेते ही हो, और तुम इन लोगों की तरह मत होना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते सुनाते कुछ नहीं। मुहासबा कीजिए, क्या सिर्फ मेरे लफ्ज़ तो आपके कानों से नहीं टकरा रहे? सोच कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। बेशक बदतरीन खलाइक अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो बहरे हैं और गूंगे हैं और जो कि ज़रा नहीं समझते, और अगर अल्लाह ताला इनमें कोई खूबी देखता तो इनको सुनने की तौफीक दे देता, और अगर इनको आप सुना दे तो ज़रूर रूगर्दानी करेंगे बेरुखी करते हुए। बड़ा प्यारा नुक्ता। आप सबको अल्लाह ने क्यों बुलाया, क्यों सुनवा रहा है? क्योंकि आप में खैर है। आप देखिए कि किसान भी उसी ज़मीन पर मेहनत करता है जो ज़रखेज़ होती है मट्टी। आपके दिलों में खैर है, इसीलिए अल्लाह इस पर कुरान का पानी डलवा रहा है। इंशाल्लाह खैर फूटेगी आपसे बहुत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। बेहतरीन आयत है, मेरी बहुत इब्तदाई उनसियत है इस आयत के साथ, सुनिएगा। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाओ, यानी लब्बैक कहते हो कि नहीं नेकी के मौके पर, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी ज़िंदगी बख्श चीज़ की तरफ बुलाते हों। और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी के और इसके दरमियान, यानी इसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाया करता है। ये अल्लाह का इंतकाम है, जब हम लबैक नहीं कहते, दिल नहीं खोलते ना, तो अल्लाह फिर तौफीक छीन लेता है। और बिला शुबा तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है, और तुम ऐसे वबाल से बचो जो कि खास इन्हीं लोगों पर वाकई ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं। और ये जान रखो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। और इस हालत को याद करो जबकि तुम जमीन में कलील थे, कमजोर शुमार किए जाते थे, इस अंदेशे में रहते थे कि तुमको लोग नोच खसोट ना लें, यानी लोग तुमको उचक ना ले जाएं। बस अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत दी और तुमको नफीस चीज़ें अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। क्या पता चला कि तुम अल्लाह की मजबूरी नहीं हो। एक और पुकार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर्रसूल। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के हकूक में जानते हुए खयानत मत करो, और अपनी काबिले हिफाजत चीज़ों में खयानत मत करो, और तुम जानते हो, और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है। सच लिखिए, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा। और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह के पास बहुत बड़ा भारी अजर है। ईमान से मुतल्लिक यहाँ फिर 3 आयतें, खूब गोलियां खानी पड़ रही हैं आज आपको ईमान की। आयत 20, अनफाल, अल्लाह और रसूल की बात खुशी से माननी है, रोते धोते नहीं। अनफाल 24, नेकी की हर पुकार पर लब्बई कहिए और तौफीक अल्लाह देगा। हमारा काम सिर्फ यस कहना होता है, बाकी काम अल्लाह कराता है। अनफाल 27, हर किस्म की खयानत से बचना है। फेथ इन एक्शन, अल्लाह और रसूल की इताअत करनी है, ज़िंदगी के किसी मामले में खयानत नहीं करनी। और उसके बाद फिर रुकू नंबर 4, 29 से 37, कुफार का दर्दनाक इंजाम, और फिर आपको पुकारा जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानम वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिन अज़ीम। क्या पैगाम है इन आयात का? ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फैसले की चीज़ देगा, दुआ करिए अल्लाह हमें फुरकान दे दे, और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, और तुमको बख्श देगा, अल्लाह हमें भी बख्श दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और इस वाक़े का भी जिक्र कीजिए जबकि काफिर लोग आपकी निस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें, या आपको कत्ल कर डालें, या आपको खारिज वतन कर दें। और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे, और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है। और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, और अगर हम चाहें तो इसके बराबर हम भी कह दें। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से मनकूल चली आ रही हैं। हिजरत की रात जो हो रहा था अल्लाह के नबी के खिलाफ, उसका तस्करा। और जब कई लोगों ने कहा कि अल्लाह अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाकई कर दे। अबू जहल का जुमला अल्लाह ने कुरान में लिख दिया, बदर के लिए निकलते हुए ये कहकर आया, और बिल्कुल उसका वही अंजाम हुआ, उधर ही अल्लाह ने उसको नीस्तो नाबूद करवा दिया। और जब कई लोगों ने कहा कि अल्लाह अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा और हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाकई कर दे, बदर के कुएं में पत्थरों के अंदर उसकी लाश दफन हो गई, और अल्लाह तला ऐसा ना करेगा कि इनमें आपके होते हुए इनको अजाब दे, और अल्लाह इनको अजाब ना देगा इस हालत में कि वो इस्तग़फार भी करते हों। नबी का वजूद किसी जगह के लिए अल्लाह की अमन की जगह होती है, आज नबी नहीं तो इस्तग़फार। बोलिए अपने आप के लिए अस्तग़फिरुल्लाह, यानी जहाँ कुछ भी लोग इस्तग़फार करते हैं अल्लाह बाकी लोगों को भी अपनी पकड़ और अजाब से बचाता है। और इनमें क्या बात है कि इनको अल्लाह सजा ना दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, जबकि वो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली नहीं, इसके मुतवल्ली यानी केयर टेकर तो सिवाय मुत्तकियों के और अशखास नहीं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। और इनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी कि सीटियां बजाना और तालियां बजाना, बस अपने कुफर के सबब इस अजाब का मजा चखो। बिलाशुबा ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोकें, सो ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल इनके हक में बायस हसरत हो जाएंगे, फिर मखलूक हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोजख की तरफ जमा किया जाएगा, ताकि कुरान नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, बस इन सब को इकट्ठा ढेर कर दे, फिर इन सब को जहन्नुम में डाल दे। ऐसे लोग पूरे खसारे में हैं। अल्लाह के फैसले आप खुद सुन लीजिए। ईमान से मुतल्लिक एक ही आयत 29 अनफाल, तकवा इंसान को सिराते मुस्तकीम पर जमाता है और फुरकान पैदा होता है, अच्छा बुरा के हक और बातिल का फ़र्क तकवा से आता है। फेथ इन एक्शन तकवा इख्तियार करना है, इस्तग़फार की कसरत करनी है, लोगों को अल्लाह के दीन से नहीं रोकना। तो पारा पूरा होता है चंद आयतों पे, 38 से 40। सिर्फ अल्लाह ताला ही वली और मददगार है। कुल लिल्लज़ीन कफरू, आप इन काफिरों से कह दीजिए अगर ये लोग बाज आ जाएं तो इनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके सब माफ़ कर दिए जाएंगे, और अगर वो अपनी आदत वही रखें तो कुफारे साबिकीन के हक में कानून नाफिज हो चुका है, यानी पिछले कुफार के साथ जो हुआ वो इनके साथ भी होगा, और तुम इनसे इस हद तक लड़ो कि इनमें फसादे अकीदा न रहे और दीन अल्लाह ही का हो जाए, फिर अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला इनके अमाल को खूब देखता है, और अगर ये मुंह फेर लें तो यकीन रखें कि अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वो बहुत अच्छा कारसाज और बहुत अच्छा मददगार है। देखिए पारे के एंड पे भी अल्लाह के कारसाज होने की बात है और सूरत के आखिर में भी यही बात आएगी, तो क्या पता चला? फेथ इन एक्शन, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए पूरी कोशिश करनी है। बोली इंशाल्लाह, अपनी हर हाल में एक ही पुकार रखें, क्या? हसबुनल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह मेरा मौला और मेरा मददगार है। आज ईमान की शाखें भी वही हैं जो आप और मैं इस वक्त कर रहे हैं। पहला टॉपिक 17th शाख है, शरीयत के इल्म की तलब होनी चाहिए। इस वक्त हम यही काम कर रहे हैं। कुरान और हदीस के इल्म का हसूल एक लाजवाल इबादत है। आप जितनी देर यहाँ बैठते हैं ना, ये आपकी इबादत है। कुरान और हदीस में इल्म और अहले इल्म की फजीलत है। आम लोगों के लिए फ़राइज़ और वाजिबात का जानना लाजमी है। हाँ, जो ज़्यादा फिर आगे रासिखून इल्म होंगे वो दूसरी फ़िक़ी बातों और दूसरी चीज़ों में भी जाएंगे। हम सब के लिए कितना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, जो हलाल और हराम का पता लग जाए, जो जिम्मेदारी है उसको अदा करें। और इल्म की वजह से फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत दी गई, और सूरह जुमर की आयत 9 में अल्लाह ने तकाबुल पेश किया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? और फातिर 28 में आता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आलिम की पहचान उसका इल्म नहीं है, उसकी खशियत है कि अल्लाह के बंदों में वो ही आलिम है जो अल्लाह से डरते हैं। हदीस की रोशनी में इसको ले लीजिए तो मुस्लिम की रिवायत है 2074, आपने फरमाया जब भी लोग अल्लाह के जिक्र के लिए बैठते हैं इन्हें फरिश्ते ढांप लेते हैं, अपने ऊपर महसूस कीजिए इसको, और रहमत इलाही इन्हें अपनी आगोश में ले लेती है और इन पर सकीना नाजिल होती है। महसूस होती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इनका जिक्र अपनी बारगाह के हाजरीन में करता है, वहाँ भी आपकी रिपोर्ट बन रही है, फरिश्तों आज कौन कौन आया था, आज कौन सी कुर्सी खाली थी, किधर है, अच्छा कोई बीमार है, जाओ उसके लिए दुआ करो, उसकी खातिर मदारत करो। हदीस है, मैं ऐसे नहीं कह रही, अल्फाज कुछ और हैं, लेकिन मुराद ये है कि आप जिस दिन छुट्टी करते हैं तो आपकी कुर्सियाँ आपको ढूंढ रही होती हैं। अहले इल्म की फजीलत क्या है कि आलिम की आबिद पर 70 गुना फजीलत है, तलब इल्म के दौरान मौत शहादत है, यानी अगर मैं इन दिनों में मर जाऊँ तो इनशाला शहादत होगी क्योंकि हम इल्म की तलब में बैठे हुए हैं। अहले इल्म की मजालिस जन्नत की क्यारियाँ हैं और उलमा अंबिया कराम के जानशीन हैं, इनकी तासीम करनी चाहिए। इसी से रेलेवेंट अगली शाख भी है, अब खुद इल्म ले लिए, ले रहे हैं, उसकी कदर आई। और यहाँ मैं एक दर्द के साथ बात करूंगी कि दुनियावी उलूम आज हमारी औलादों को जितना बदतमीज बनाते जा रहे हैं कि वो आज दीन तो छोड़िए दुनिया के उस्तादों की इज्जत नहीं करते। अपने बच्चे को हमेशा सिखाइए, उस्ताद चाहे आपको साइंस केमिस्ट्री पढ़ाए या मैथ पढ़ाए या कुरान पढ़ाए, वो काबिले इज्जत होता है। अगर हमारे उस्तादों ने हमें उर्दू ना पढ़ाई होती तो आज हम कैसे बोलते? तो इल्म की इशाअत करना अब अगला स्टेप है, खुद ले लिए, अब इल्म की मदद कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए इसको, क्योंकि इंसानों को दुनिया में अल्लाह ने खिलाफत और नियाबत के लिए मंतखब किया है। अंबिया कराम का अल्लाह के दीन की तरफ दावत देना इस बात की दलील है कि वो मुबशरीन और मुनजरीन बनाकर भेजे गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बल्लिगो अन्नी वलो आया, एक ही आयत चाहे हो उसको भी आगे पहुंचाओ। तो लिहाजा उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी क्या है? सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, डरो और डराओ, जागो और जगाओ, यानी इल्म की नशो इशात करो, इसको ब्रॉडकास्ट करो। और सूरह नहल आयत 64 में भी अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम इन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी इन लोगों के लिए जो इसे मान लेते हैं। किसी ने अच्छी बात कही कि तुम कुरान पढ़ लो तो तुम्हारा कोई फिरका नहीं रहेगा। आज कुरान ना पढ़ने की वजह से उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ सेक्ट्स में जाती है, और हजरत अलविदा के मौके पर फिर आपने ये कहा था कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचा दो। अहादीस पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए अल्लाह के नबी की एक दुआ है, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को सरसब्जो शादाब रखे जो कोई हमसे बात सुने फिर इसे वैसे ही आगे पहुंचा दे जैसे उसने सुनी, क्योंकि बास लोग जिन्हें कोई बात पहुंचाई जाए वो इसे सुनने वाले से ज्यादा याद रखते हैं। अबू दाऊद की रिवायत है 3610। तो आप किसी को दावत दें, हो सकता है वो आपसे ज्यादा अमल कर ले और आपका सदका जारिया बने। आज हमने बदर का किस्सा सुना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में जो दुआ की थी, हम भी आज उसी दुआ पे पारे को पूरा करते हैं कि अल्लाह ये छोटा सा गिरोह है आज मुसलमानों का, इनको मदद दे दे। अल्लाह आज वो मुसलमान जो गजा में अपने जान जिस्म सब दे रहे हैं तो उनकी कदर कर ले। हजरत मूसा ने एक मुतालबा किया था कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, उसका जवाब क्या था? लन तरानी। इस पे अल्लामा इकबाल ने कुछ कहा, सदाए लन तरानी सुन के ए इकबाल मैं चुप हूँ, यानी जब अल्लाह ने मूसा को कह दिया कि तुम मुझे नहीं देख सकता तो मैं कैसे तकाजा करूँ, तकाजों की कहाँ ताकत है मुझ फुरकत के मारे में। तो अल्लाह मुलाकात का दिल तो सबका करता है लेकिन उसके लिए मरना पड़ता है। दुआ करते हुए उठिएगा, रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। सूरह तौहा में 114 है। और अल्लाह के नबी ने बदर के मैदान में खड़े होकर क्या कहा था? अनशुदु का अहद का वबाद का अल्लाहुम्मा इन्शीता लम तोबत बादल यौमी अबदा। अल्लाह मैं तुझे तेरा अहद और वादा नुसरत याद दिलाता हूँ, अल्लाह अगर तू चाहे कि मुसलमानों को फना कर दे तो आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत ना की जाएगी। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन।